नमस्कार भारत, 9 जून दिन शनिवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ोतरी की आज पहुंची G7 सम्मेलन।
Canada will not change its mind when it comes to the illegal and
प्रधानमंत्री मोदी को जान के खतरे के पुलिस के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जब उसकी लोकप्रियता कम होती है तब तक वो क्या करते थे, इस तरह के शुकुपा छोड़ते थे, छुड़वाते थे।
विवेचना में रेहान फजल से सुनिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी।
सुबह जब रोशनी होने लगी और देखा कि अकाल तख्त अभी तक बहुत बुरी तरह लड़ रहा है तो हुक्म दिया गया कि अकाल तख्त का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर फायर किया जाए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि G7 देशों के समूह में रूस को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि रूस एक प्रमुख औद्योगिक देश है और इसे दोबारा इस समूह में जगह दी जानी चाहिए। साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को G8 देशों के समूह से निकाल दिया गया था और जिसके बाद ये समूह G7 बन गया था। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ट्रंप के ताज़ा बयान पर चिंता जताई है। टस्क ने कहा,
What worries me most, however, is the fact that the rules-based international order is being challenged.
मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नकारा जा रहा है और ये काम कोई और नहीं बल्कि वो कर रहा है जिसे G7 का निर्माता माना जाता है और जो इन कानूनों को लागू करने की गारंटी देता है। ये थे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के शब्द। कनाडा के क्यूबेक में G7 सम्मेलन शुरू होने से पहले अमेरिका के आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले पर सदस्य देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर ट्रंप अलग थलग रहना चाहते हैं तो अन्य देश साथ मिलकर अपने बीच समझौता करने के लिए तैयार हैं। मैक्रों ने कहा,
Je redirai pour ma part au président Trump ce qu'on vient d'expliquer l'un et l'autre.
मैं राष्ट्रपति ट्रंप से फिर कहना चाहता हूं कि उनके ये कदम हानिकारक हैं, दूसरों के लिए नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी। मेरे लिए ये सिद्धांतों की बात है। आप सहयोगियों के खिलाफ व्यापार युद्ध नहीं छेड़ सकते। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज 2 दिवसीय यात्रा पर चीन रवाना होंगे। पिछले 1.5 महीने में मोदी की यह दूसरी चीन यात्रा है। इससे पहले वह 26 अप्रैल को अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए चीन के वुहान गए थे। अपनी यात्रा से पहले मोदी ने ट्वीट किया कि SCO सम्मेलन में पहली बार भारत पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। सम्मेलन में SCO देशों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करूंगा। चीन सरकार के हैकर्स ने कथित तौर पर अमरीकी नौसेना के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के कंप्यूटरों से अहम डेटा चुरा लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक चुराए गए डेटा में अमरीकी पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाली सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को तैयार करने की खुफिया जानकारी भी शामिल है। युगांडा की राजधानी कंपाला में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद इब्राहिम अबीरिगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना में उनका अंगरक्षक भी मारा गया। इब्राहिम अबीरिगा को राष्ट्रपति योवेरी मुसेविनी का कट्टर समर्थक माना जाता है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सोमालिया में इस्लामिक चरमपंथियों के हमले में एक अमरीकी सैनिक की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हो गए हैं। घटना सोमालिया के दक्षिण पश्चिमी शहर जुबालैंड के इलाके में हुई जहां अमरीकी सैनिक स्थानीय सुरक्षा बलों के साथ चरमपंथी संगठन अल शबाब के लड़ाकों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अमरीका में गोलीबारी की घटना में अपने 9 सदस्यों को गंवाने वाले एक परिवार ने संघीय सरकार पर मुकदमा किया है और हर्जाने की मांग की है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। अमेरिका की ओर से स्टील और एल्यूमिनियम के नए आयात शुल्क को लेकर टकराव का असर क्यूबेक में हो रहे G7 सम्मेलन में भी दिख रहा है। इसमें हिस्सा ले रहे देशों ने साझा बयान में शामिल होने से मना कर दिया है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि वे इस पर सहमत हो जाएंगे। उधर ट्रंप ने G7 देशों में रूस को शामिल किए जाने की मांग भी रख दी है। ब्यौरा सुनिए दिनेश उप्रेती से।
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि रूस को G7 देशों में फिर शामिल किया जाए। कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेने से पहले ट्रंप ने कहा कि बैठक में रूस को भी होना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि बैठक में शामिल होने वाले देशों की संख्या कम हुई है और कई मुद्दों पर G7 देशों के नेता उनसे सहमत नहीं हैं। साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया था। ट्रंप कह रहे थे कि रूस को इस बैठक में होना चाहिए, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। यह हो सकता है मैं राजनीतिक रूप से सही न हूं, लेकिन हमें दुनिया चलानी है। G7 जो कभी G8 हुआ करता था, उन्होंने रूस को इससे बाहर निकाल दिया। उन्हें अब रूस को इसमें फिर शामिल करना चाहिए। लेकिन ट्रंप के इस सुझाव से जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल समेत यूरोपीय देशों के कई नेता सहमत नहीं हैं।
I see a lot of speculation about G6+1 or G7-1 or
यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क कह रहे थे कि वो इस बारे में कई तरह की बातें सुन रहे हैं, G6+1, G7-1 या G7+1। लेकिन इसे 7 पर ही छोड़ देना बेहतर है, ये लक्की नंबर है। कम से कम हमारी संस्कृति में तो ऐसा ही है। ये पहला मौका है जब G7 में ऐतिहासिक मतभेद दिख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह इस सम्मेलन के मंच का इस्तेमाल सहयोगी देशों के साथ व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए करना चाहते हैं। सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। यही नहीं, ट्रंप ने कारोबार से जुड़ी जांच करने का आदेश भी दिया है। ट्रेड वार की राह पर बढ़ रहे ट्रंप के रुख से कनाडा और जापान जैसे औद्योगिक देशों में गुस्सा है।
Canada will not change its mind when it comes to the illegal and absolutely unjustified.
कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड कह रही थी कि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी पर उनका देश अपना रुख नहीं बदलेगा। अमेरिका का ये कदम अन्यायपूर्ण और अवैध है, फिर चाहे ये स्टील उसे कनाडा एक्सपोर्ट करता हो या फिर G7 के अन्य देश। कनाडा में G7 सम्मेलन खत्म करने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां 12 जून को उनकी मुलाकात उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से होने वाली है।
दिनेश उप्रेती से ब्यौरा सुन रहे थे आप।
खबर सच है अगर BBC पर है।
महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक अदालत में एक पत्र पेश करते हुए दावा किया है कि माओवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजीव गांधी की तरह हत्या करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस का कहना है कि भीमा कोरेगांव में जनवरी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त के दिल्ली स्थित फ्लैट से ये पत्र बरामद किया गया है। पुणे से संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट। तकनीकी कारणों से हम आपको फिलहाल संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट नहीं सुना पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में इंटरमीडिएट विज्ञान की परीक्षा देने वाले आधे से अधिक छात्र फेल हो गए हैं। झारखंड बोर्ड द्वारा ली जाने वाली इंटर साइंस की परीक्षा में पिछले कुछ सालों में इसी तरह का परिणाम आ रहा है। छात्र लगातार फेल हो रहे हैं और पास होने वाले छात्रों के अंक भी CBSE जैसे दूसरे बोर्ड की तुलना में काफ़ी कम हैं। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली गई 12वीं विज्ञान की परीक्षा में करीब 52% छात्र फेल कर गए हैं। यह पिछले साल घोषित रिजल्ट से 4% कम है। झारखंड के सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में विज्ञान पढ़ने वाले इंटर के छात्रों का रिजल्ट पिछले कुछ सालों से लगातार खराब आ रहा है। सबसे खराब रिजल्ट साल 2013 में रहा, जब सिर्फ 38% छात्र ही परीक्षा पास कर पाए। इस साल आईएसए की परीक्षा में शामिल कुल 92,405 छात्रों में से 47,728 परीक्षार्थी फेल कर गए। साल 2017 में भी इंटर साइंस का रिजल्ट 52% ही रहा था। झारखंड एकेडमी काउंसिल के चेयरमैन अरविंद कुमार सिंह कहते हैं कि शिक्षकों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए।
अभी तो समीक्षा करने पर नहीं, अभी कैसे कहा जा सकता है। हम लोग तो मान लीजिए एग्जामिनिंग बॉडी है ना, हम तो एग्जामिनेशन लेते हैं और जो रिजल्ट होता है उसको पब्लिश करते हैं। सच्चाई यही है कि टीचर ही मूल्यांकन करते हैं, वही पढ़ाते भी हैं बच्चों को।
वहीं डोरंडा कॉलेज के प्रिंसिपल वीएस तिवारी का कहना है कि ऐसे रिजल्ट के लिए सरकार की शिक्षा व्यवस्था को जिम्मेवार माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती ही नहीं कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी बेहतर रिजल्ट लाएं। इस कारण बगैर जाने समझे नीतियां बनाई जाती हैं, इसका खामियाजा आखिरकार छात्रों को उठाना पड़ता है।
एक्चुअली इन लोगों का ध्यान पढ़ाई लिखाई पर कुछ है नहीं, शिक्षकों की घोर कमी है। पहला गलती इन्होंने किया कि सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड कर दिया इंटर स्कूल में विदाउट हैविंग अरेंजमेंट ऑफ गुड टीचर्स। कॉलेज से आप इंटर को किनारे कर दिए और सेकेंडरी स्कूल में उसको प्रमोशन दे दिए। जिसको प्रमोशन दिए वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, जहाँ इंतजाम था वहाँ लड़का को बाहर कर दिए।
उर्सुलाइन स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मेरी ग्रेस भी इससे इत्तेफाक रखती हैं। वे कहती हैं कि रिजल्ट के लिए सिर्फ शिक्षकों या छात्रों को ही जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते।
हम एक तरफा टीचर्स पर ही दोष दें या बच्चों को ही दोष दें, ये तो नहीं होगा। पार्शियली वो ना रिस्पॉन्सिबल, ये जब तक इसका रिजल्ट ना निकाले अपना इंडिविजुअल कॉलेज, तब तक 12 की पढ़ाई चालू नहीं होगी। तो टाइम कहाँ है कि ये लोग सिलेबस पूरा करें? जब चैप्टर्स पूरे नहीं होंगे तो साइंस जैसे विषय के लिए गवर्नमेंट में पढ़ने वाले देहात के बच्चों का क्या हाल होगा?
दरअसल झारखंड के हाई स्कूलों और प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 23,000 स्वीकृत पदों में से 18,000 रिक्त पड़े हैं। इनमें सर्वाधिक रिक्त पद विज्ञान और गणित के शिक्षकों के हैं। सरकार कहती है कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद स्कूलों की स्थिति में सुधार आ जाएगा। रवि प्रकाश, BBC रांची।
महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक अदालत में एक पत्र पेश करते हुए दावा किया है कि माओवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजीव गांधी की तरह हत्या करने की साजिश रच रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले हम तकनीकी वजहों से ये रिपोर्ट आपको नहीं सुनवा सके थे। पुणे से संजय रमाकांत तिवारी की ये रिपोर्ट, अब सुनिए।
हाल ही में कथित माओवादी होने के आरोप में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि इनमें दिल्ली से गिरफ्तार किए गए एक कार्यकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप से कथित रूप से एक पत्र पुलिस के हाथ में लगा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश किए जाने का उल्लेख है। शुक्रवार को मुंबई में मीडिया द्वारा पूछे जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके बारे में बताया।
एक इंटरनल कम्युनिकेशन ये भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक कमांडर ने दूसरे उनके व्यक्ति को लिखा हुआ पत्र है, जिसमें पूरा प्लान जिस प्रकार से श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी उसी प्रकार से उसी मॉड्यूल में मोदी जी की भी हत्या किस प्रकार से की जाए, इस प्रकार के प्लान को उसमें शेयर किया गया है और ऐसी कई चीजें इसमें सामने आई है। पुलिस ये सारी चीजों को जब्त कर चुकी है, ये चीजें न्यायालय के सामने भी जाएगी, सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके और लिंक्स है, उन लिंक्स को भी ढूंढने का काम चल रहा है।
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क की ओर इशारा किया। उधर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने इस मामले पर सवाल खड़े कर दिए।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्रियों और अगर उनकी हत्या का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये बेहद चिंता की बात है। और ऐसे में पुलिस वाले पुलिस षड्यंत्र की जानकारी सार्वजनिक करें, ये अपने आप में आपत्ति करने की बात है। जो लोग हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको पूरी तरह से रिजन आउट करना चाहिए, उसको नाकाम करना चाहिए, ये एक बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तब से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जब उनकी लोकप्रियता कम होती है तब तक वो क्या करते थे, इस तरह के शगुफा छोड़ते थे, छुड़वाते थे। इससे मुझे आशंका है इस बार भी ये शगुफा तो नहीं है। अगर कोई षड्यंत्र है इसके खिलाफ जांच एजेंसियों को काम करनी चाहिए, न कि मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए।
उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें भी कुछ पत्र मिले हैं जिनमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाल ही में हुए नक्सली एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस उनके परिवार को और पुलिस अधिकारियों को भी लक्ष्य किए जाने की कथित धमकी है। पुणे महाराष्ट्र से संजय रमाकांत तिवारी, BBC।
अब दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा सुनिए दिनेश उप्रेती से, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी कुलदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के पुलिस के दावे की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले बनने पर है। अखबारों ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया भी छापी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि माओवादी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका अंत निकट है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संघ मुख्यालय में संबोधन पर भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की प्रतिक्रिया को पहले पन्ने पर छापा है। खबर की सुर्खी है, प्रणव का आरएसएस के घर पर होना इतिहास की अहम घटना। खिलाड़ियों के फीस के मुद्दे पर हरियाणा सरकार की किरकिरी की खबर को भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दरअसल हरियाणा सरकार ने शुक्रवार के सुबह 10 बजे अधिसूचना जारी की थी कि जो सरकारी नौकरी में हैं और पेशेवर खेल खेलते हैं या किसी के लिए विज्ञापन करते हैं तो उससे होने वाली आय का एक तिहाई हिस्सा स्पोर्ट्स काउंसिल के खाते में जमा कराना होगा। बाद में इस पे काफ़ी बवाल मचा तो शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया कि उन्होंने खेल विभाग की संबंधित फाइल तलब कर ली है और अगले आदेश तक इस अधिसूचना को रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज से शुरू हो रहे चीन दौरे की खबर भी सुर्खियों में है। खबरों में कहा गया है कि संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में मोदी आतंकवाद, कारोबार और निवेश की चुनौतियों पर भारत का पक्ष रखेंगे। नोएडा में एक सहायक इंजीनियर के आयकर विभाग की छापेमारी में 250 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति मिलने की खबर को भी कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक स्कूल में कुर्सी में बैठने को लेकर भीड़ ने एक दलित महिला पर कथित रूप से हमला किया।
बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती अखबारों की समीक्षा के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
कर्नाटक और यूपी के कैराना में एकजुट विपक्ष ने रोका बीजेपी का रास्ता। क्या 2019 में काम करेगा विपक्षी एकजुटता का फॉर्मूला या 2014 में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत दिलाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी 2019 में भी दोहराएंगे कमाल? इस बार इंडिया बोल में इन सवालों पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 जून शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
इंडिया बोल कार्यक्रम आज शाम 7:30 बजे। 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान की लड़ाई लड़ रहे जनरल सिंह भिंडरेवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया था जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। इस अभियान में जनरल सिंह भिंडरेवाले मारे गए थे लेकिन तत्कालीन भारतीय नेतृत्व को इसकी बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्या क्या हुआ था बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
31 मई 1984 की शाम मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बराड अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे।
शाम को मेरे को एक टेलीफोन कॉल आया कि अगले दिन सुबह 1 तारीख के सुबह मेरे को चंदी मंदिर पहुंचने का है एक मीटिंग के लिए और पहली शाम को हमने मनीला जाना था। हमारी टिकटें बुक हो गई थी, हमने अपने ट्रेवलर्स चेक्स ले लिए थे और हम दिल्ली जा रहे थे अपने जहाज पकड़ने के लिए। मेरठ से दिल्ली बाय रोड गया, वहां से बाय प्लेन मैं चंडीगढ़ पहुंचा और सीधा वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में गया। जब वहां पहुंचा तो मेरे को खबर मिली कि मेरे को ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करना है और अमृतसर जल्दी से जल्दी जाना है क्योंकि हालात बहुत खराब हो गई हैं। भिंडरांवाले ने पूरा कब्जा कर लिया है गोल्डन टेंपल के ऊपर। पंजाब में इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा है तो जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन को ठीक करने का है नहीं तो पंजाब अपने हाथ से निकल जाएगा। तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई।
भिंडरांवाले को कांग्रेसियों ने ही बढ़ावा दिया। उनको बढ़ावा देने के पीछे मकसद ये था कि अकालियों के सामने सिखों की मांग उठाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो उनको मिलने वाले समर्थन में सेंध लगा सके। भिंडरांवाले विवादास्पद मुद्दों पर भड़काऊ भाषण देने लगे और धीरे धीरे उन्होंने केंद्र सरकार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। 1982 में भिंडरांवाले मेहता चौक गुरुद्वारा छोड़ पहले स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक निवास और उसके कुछ महीनों बाद अकाल तख्त से अपने विचार व्यक्त करने लगे।
प्यारे खालसा जी, आज आप शहीदों की याद एकत्र हुए हैं। लाला जगत नारायण ने बहुत नंद पातशाह शब्द वरते ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹਨ।
4 June 1984 ਕੋ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਸਾਦੇ ਕਪੜੋਂ ਮੇਂ ਸਵਰਣ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾ ਗਿਆ। 5 June ਕੀ ਸੁਬਹ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ऑपरेशन में भाग लेने वाले सैनिकों को उनके ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया।
5 तारीख के सुबह 4:30 बजे के करीब मैंने हर एक बटालियन के पास जाके कोई आधा घंटा उनके जवानों के साथ बात की। उनसे मैंने ये बताया कि हालात कितने खराब हो गए हैं और ये जो अपना स्वर्ग मंदिर है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी होली प्लेस के अंदर जाके उसको बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, हम उसकी सफाई कर रहे हैं, उसमें खून बह चुका है और हम लोग बिल्कुल जितने कैजुअल्टी कम हो सकते हैं उतना होना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना है कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं। मैंने साथ ही उनसे ये भी कहा कि आप में से अगर कोई जवान इतना सोचता है कि मैं मेरे को अंदर नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ और मैं आपके कमांडिंग ऑफिसर को कहूंगा कि आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है और आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पहले बटालियन में मैं गया, कोई नहीं खड़ा हुआ। दूसरे में कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरे में कोई नहीं खड़ा हुआ। चौथी बटालियन में एक सिख ऑफिसर खड़े हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके फीलिंग्स इतने स्ट्रांग हैं आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसने कहा साहब आप मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं हूँ 2nd Lieutenant Raina, अंदर जाना चाहता हूँ और मैं सबसे आगे अंदर मेरे को आप भेजिए ताकि मैं अकाल तख्त में सबसे पहले पहुंच के भिंडरांवाले को पकड़ लूँ। मैंने कहा बहुत शाबाश, आप तो बहुत ही बहादुर जवान हो। और मैंने उनके कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि इनकी प्लाटून सबसे आगे सबसे पहले स्वर्ग मंदिर में जाएगी और उसकी प्लाटून सबसे पहले अंदर गई। इतनी मशीन गन फायर लगे उसके ऊपर कि उसकी दोनों टांगे टूट गई, खून बह रहा था। उनका कमांडिंग ऑफिसर कह रहा था मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रुक नहीं रहे, वो क्रॉलिंग करते जा रहे हैं अकाल तख्त की तरफ। मैंने कहा नहीं, एम्बुलेंस यहाँ खड़ा है, उसको जबरदस्ती अभी आप उठा के वापस ले आइए बाहर। उसके पैर एम्प्यूटेट हो गए। तो उसकी बहादुरी के लिए मैंने उसको अशोक चक्र दिलवाया।
10 बजे के आसपास सामने से हमला बोला गया। काली वर्दी पहने पहली बटालियन और पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को निर्देश दिया गया कि वो परिक्रमा की तरफ बढ़ें, दाहिने मुड़ें और जितनी जल्दी संभव हो सरोवर के छोर तक पहुंचकर अकाल तख्त की ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही कमांडोज आगे बढ़े उन पर दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से जबरदस्त गोलीबारी की गई। कुछ ही कमांडो इस जवाबी हमले में बच पाए। उनकी मदद करने आए लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खां के नेतृत्व में 10वीं बटालियन के गार्ड्स ने सीढ़ियों के दोनों ओर मशीन गन ठिकानों को निष्क्रिय किया, लेकिन उनके ऊपर सरोवर के दूसरी तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। कर्नल इसरार खां ने सरोवर के उस पार भवन पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। कहने का मतलब ये कि सेना को जिस विरोध का सामना करना पड़ा उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी।
वो तो पहले ही 45 मिनट में पता लग गया था कि इनकी प्लानिंग और इनकी ताकत और इनकी जो वेपन्स हैं, उनकी जो फोर्टिफिकेशंस हैं, इतनी ज्यादा हैं कि ये आसान नहीं होगा काम। क्योंकि हम चाहते थे कि अकाल तख्त की तरफ कमांडो जाएं और हम लोग वो स्टन ग्रेनेड फेंकें अकाल तख्त के अंदर। स्टन ग्रेनेड का जो गैस होता है उससे आदमी मरता नहीं है, उसकी सिर दर्द हो जाती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो ठीक से देख नहीं सकता है। तो उतने में हमारे जवान अंदर चले जाए। लेकिन जब ये ग्रेनेड फेंकते थे तो कोई रास्ता ही नहीं था अंदर जाने का। हर एक खिड़की हर एक दरवाजे के ऊपर सैंड बैग लगे हुए थे, तो ग्रेनेड दीवारों पे फटक के नीचे परिक्रमा पे आ रहे थे और हमारे जवानों के ऊपर ये स्टन ग्रेनेड आ रहे थे।
सिर्फ उत्तरी और पश्चिमी छोर से ही सैनिकों पर फायरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि पृथकतावादी जमीन के नीचे मेन होल से निकलकर मशीन गन से फायर कर अंदर ही गायब हो जा रहे थे। जब सैनिकों का बढ़ना रुक गया तो जनरल बराड़ ने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के इस्तेमाल करने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही APC अकाल तख्त की तरफ बढ़ा उसे चीन में बने रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। जिस तरह से चारों तरफ से चल रही गोलियों से भारतीय जवान धराशायी हो रहे थे, जनरल बराड़ को मजबूर होकर टैंकों की मांग करनी पड़ी। मैंने जनरल बराड़ से पूछा कि क्या टैंकों का इस्तेमाल पहले से आपकी योजना में था?
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुरू में नहीं था, ये तो एकदम बुलाए गए जब देखा कि अकाल तख्त के नजदीक भी नहीं आदमी जा सकता है, सिपाही नहीं जा सकता है, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे अकाल तख्त में, क्योंकि सुबह हो जाएगी और जैसे मैंने कहा आपको एक दफा सुबह हो गई तो सैकड़ों में लोग आ जाएंगे चारों तरफ से और फौज के घेरा कर देंगे। तो टैंकों का इस्तेमाल सिर्फ उसलिए करना था कि उसकी जो लाइट है, ज़ीनॉन बल्ब है या हेलोजन बल्ब है, वो बहुत पावरफुल बल्ब है, और वो लाइट ऑन करे ताकि अकाल तख्त में जो लोग हैं उनकी आंखों में वो लाइट जाए और वो चंद एक सेकंड और मिनट के लिए देख ना पाए और उस टाइम में वो निशान ना ले सके और हमारे लोग नजदीक पहुंच जाए। लेकिन अफसोस ये था कि वो जो बल्ब्स हैं ये 20 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा ज्यादा 40 सेकंड रहते हैं फिर फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज हो गया, टैंक को वापस ले गए, दूसरा टैंक ले आए, उसका लाइट ऑन किया, तो ये बेसिकली लाइट का इस्तेमाल के लिए हम टैंक ले गए थे। लेकिन जब कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा था ये लाइट्स के साथ, सुबह जब रोशनी होने लगी और देखा कि अभी अकाल तख्त अभी तक बहुत बुरी तरह लड़ रहा है, तो हुक्म दिया गया कि टैंक के जो सेकेंडरी आर्मामेंट है उसके साथ अकाल तख्त का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर फायर किया जाए, ताकि जब वहाँ फायरिंग हो और कुछ ऊपर के पत्थर पुत्थर गिरे नीचे तो शायद लोग डर जाएं वहाँ पे और निकल आए बाहर।
इसके बाद तो अकाल तख्त के लक्ष्य को किसी और सैनिक लक्ष्य की तरह ही माना गया। बाद में जब रिटायर्ड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि भारतीय टैंकों ने अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले बरसाए थे। मैंने जनरल बराड से पूछा कि आपको कब अंदाजा हुआ कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले और शहबीक सिंह मारे गए।
लोग बाहर निकले सफेद झंडे के साथ और एक बहुत जोर से रश आउट हुआ, कोई 30-40 लोग ने दौड़ लगाई वहां से बाहर निकलने के लिए। तो हमने कहा ये कुछ लगता है कि ऐसी बात हो गई है, और फिर फायरिंग भी बंद हो गई थी सब। तो फिर हमने अपने जवानों से कहा अभी अंदर जाके तलाशी लो, और फिर उनकी मृत्यु का पता लगा।
इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए और 248 अन्य सैनिक घायल हुए। इसके अलावा 492 असैनिकों की मौत की पुष्टि हुई और 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना से भारत क्या पूरे विश्व में सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई। ये भारतीय सेना की सैनिक जीत जरूर थी, लेकिन इसे एक बहुत बड़ी राजनीतिक हार माना गया। इसकी टाइमिंग, रणनीति और कार्यान्वयन पर कई सवाल उठाए और अंततः इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।
सुर सुराही खंजर प्याला बिंग कसाया दसना मित्र प्यारे हाल
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आज की विवेचना आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि G7 देशों के समूह में रूस को भी शामिल किया जाना चाहिए। कनाडा के क्यूबेक में G7 सम्मेलन शुरू होने से पहले अमेरिका के आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले पर सदस्य देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज 2 दिवसीय यात्रा पर चीन रवाना होंगे। चीन सरकार के हैकर्स ने कथित तौर पर अमरीकी नौसेना के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के कंप्यूटर से अहम डेटा चुरा लिया है। युगांडा की राजधानी कंपाला में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद इब्राहिम अबीरिगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सोमालिया में इस्लामिक चरमपंथियों के हमले में एक अमरीकी सैनिक की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हो गए हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटना में अपने 9 सदस्यों को गंवाने वाले एक परिवार ने संघीय सरकार पर मुकदमा किया है और हर्जाने की मांग की है। जापान में जन्मे लेखक काजुओ इशिगुरा को ब्रिटेन की महारानी के जन्मदिन पर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।